Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aptabal. आप्त का अर्थ होता है यथार्थ वक्ता, यानी विश्वसनीय बात करे उसको कहते हैं आप्त। अविश्वसनीय बात करे तो वो आप्त नहीं होगा, वो तुम्हारे हमारे जैसे हैं, इसलिए तुम हम जो बोलेंगे वो विश्वसनीय नहीं होगा। है हमारा स्वार्थ उसमें छुपा हो सकता है, लेकिन आप्त पुरुष, सत्य पुरुष, यथार्थ वक्ता व्यक्ति, उनके बातों पर शत्रु भी विश्वास करते हैं, शत्रु भी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब हुआ आपका अर्थ विश्वसनीय। ऐसी सेना हमने तैयार किया रखा है कि आपके लिए पूरे विश्वसनीय, जरा भी धोखा नहीं देंगे। वो कौन है सेना महाराज? घने इंद्रिया, इंद्रिय घना, घन शब्द का अर्थ होता है समूह। तो क्या इंद्रिय समूह, वो आप्त सेना है, वो विश्वसनीय सेना फौज है। मन रूपी जो किला है और वहां प्रकार उद्यत गुण सर्वगुण संपन्न मन है, और वहां प्रकाश है बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश है मन के पास, बुद्धि का प्रकाश है ये परिखा। गंभीर्यम परिखा पदम गणधृति प्राकार उद्यत गुण स्तोमश्चाप्त बलम गणेन्द्रिय चयो द्वाराणि देहे स्थितः। अब तुम कहोगे कि वो किले में चारों तरफ से हवा न आती हो। बोले ऐसा किला है कि नौ द्वार है पूरा, वहां जाकर बैठोगे तो पूरा दुनिया का नजारा भी देख सकते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ वह द्वार फैले हुए हैं। आपको जिधर का दृश्य देखना हो देख लो भाई, है पूर्व का देखना हो तो देख लेना, उत्तर का देखना हो तो देख लेना, है दक्षिण का देखना हो तो देख लेना, लेकिन दक्षिण का देखने के लिए जाना नहीं भाई। दक्षिण का द्वार कौन सा द्वार है पता है? यम द्वार। अब यमराज कौन से इंद्रिय के अधिपति हैं तुम लोगों को पता है? उसने उपस्थ कहा, समथिंग क्या होता है समथिंग? उपस्थ और गुदा एक ही है, बच्चा पैदा कर लोगे गुदा से? समथिंग है, इसका मतलब क्या होता है? गुदा तो गुदा, उपस्थ तो उपस्थ, उपस्थ में ब्रह्मा जी रहते हैं और गुदा में यमराज रहता है। तो दक्षिण का द्वार कौन हुआ? दक्षिण दिशा यमराज का, और यमराज कहां रहते हैं? दक्षिण दिशा में रहते हैं, और द्वार गुदा इंद्रिय, और दक्षिण का दरवाजा है, वहां जाने की चेष्टा नहीं करना भाई। वहां जाओगे तो बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाओगे सीधे है, बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाओगे, वह द्वार तो बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाएगा। मलक द्वार है, दुर्गंध से भरा हुआ है, फिर भी कभी कभी यदि इच्छा हो तो जा सकते हो महाराज, लेकिन बाकी दरवाजे तो बड़े अच्छे हैं। क्या दृश्य, क्या बढ़िया आनंददायी है, कहीं बढ़िया जाही जूही की सुगंध लेना हो तो नासिक चले जाना। नासिक माने ग्राण इंद्रिय, नाक। जाई जूही का सुगंध लेना हो तो नासिक चले जाना, संगीत का आनंद लेना हो तो कानपुर चले जाना। कहां है कानपुर? क्या सुंदर, क्या सुंदर है, देख लो तुमको संगीत का, कानपुर यही है, नासिक यही है, ले जी प्रेमपुरी, प्रेमपुरी की रसपुरी है, कभी रसपुरी का आनंद लेना हो तो कहां जाओ? प्रेमपुरी, रसपुरी जुबा में जाओ यार, क्या सुंदर है भाई। स्तोमश्चाप्तबलम गणेन्द्रिय चयो द्वाराणि देह स्थिता। इस शरीर रूपी महल में, राज किले में, और इतना सुंदर राज महल है, वहां परिघा भी है गांभीर्यम, और इंद्रिय आप्तबलम च गणेन्द्रियो द्वाराणि देह स्थित, और वहां सब कुछ संपन्नता है। विद्या वस्तु समृद्धि इति अखिल सामग्री समेते सदा। और जहां विद्या का बल है, जहां विद्या है वहां सभी चीज आ जाता है। विद्या है तो वहां सभी चीज आता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, हम लोग पढ़ते थे विद्या के बारे में, निबंध लिखना पड़ता था विद्या का महत्व लिखो। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान देखो जिसके पास विद्या है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यस्यास्ति वित्तम, तो वित्त तो चोरी करके भी कोई और ले जाएगा, लेकिन विद्या धन कोई चोरी नहीं कर सकता है। न चौर्यहार्यम न तो भ्रातृवाज्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। मैं देख लो विद्या का महत्व यह है, उस विद्या धन की कोई चोरी भी नहीं करता। न भ्रातृवाज्यम, भाइयों में बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, संपत्ति हो भाई कहे कि हमको बंटवारा करो तो बोले बेटा मेरे पास कुछ विद्या है उत्ते तू ले जा विद्या, आधा तू ले जा। बोले हमको तेरी भी बुद्धि नहीं चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए। तो पैसा धन होगा तो भाई भी बंटवारा करेंगे, और पैसा जो धन है और संपत्ति का और जो धन है वो तो चौराहार्यम भ्रातृभाज्यम, भाई बंटवारा करने के लिए तत्पर हो जाएगा तुरंत। और राजकारी सबसे पहले आंख तो उसी का ही पड़ता है, राज्य का, राजा का। आजकल जिसको इनकम टैक्स बोलते हो ना, तुम्हारी यदि विद्या धन होती तो इनकम टैक्स पड़ता है, भौतिक धन में इनकम टैक्स पड़ता है, विद्या धन में इनकम टैक्स पड़ता है। तूने अनैतिक दृष्टि से तुमने ये विद्या अर्जित की है, इस विद्या में इतना प्रतिशत टैक्स लगेगा, आयकर जमा करो। कहीं किसी को नोटिस भेजा है राज्य ने? बोलो, तूने ज्यादा पढ़ ली है, आवश्यकता से ज्यादा पढ़ ली, इसलिए उस विद्या का इतना प्रतिशत टैक्स भरो। बोलो, राजा टैक्स भरने के लिए कहेगा? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, आग से जलेगा नहीं, भाई बंधु बंटवारा करने के लिए नहीं आएंगे, चोर चोरी नहीं करेगा, राजा के दृष्टि टैक्स के लिए नहीं पड़ेगा। क्या सुंदर धन है वो विद्याधन, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वस्तु समृद्धि, और विद्या रूपी समृद्धि जहां है तो सब समृद्धि है, इसलिए कहा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा तो अपने देश में ही मान्य होता है, दूसरे के देश में कौन गिनेगा उसको, लेकिन विद्वान होगा तो सर्वत्र पूज्यते, वही समृद्धि है। अखिल सामग्री समेते सदा, वो सब कुछ हमेशा रहने वाला है, इसलिए ऐसा एक किला है, ऐसा राजमहल है, ऐसा एक दुर्ग है मेरे पास, हाँ? और तुमको दुर्ग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासम करो, मेरे मन रूपी दुर्ग में आप निवास करो। हमको विषयों में जाना बड़ा आसान है, इंद्रियों के पीछे लगकर विषयों में जाना बड़ा आसान है, हम जाते ही हैं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं पड़ती है, लेकिन विषय से वापस फिर मन में जाना पड़े विषय से वापस आकर इंद्रियों के सहायता छोड़कर पूरी तरह मन में एकाग्रत एकदम एकाग्रित होना पड़े तो कठिन है कि नहीं है? तुम हमारे लिए कठिन है कि नहीं एकाग्रता? तो ये एकाग्रता इंद्रियों से सिद्ध होता है कि मन से? एकाग्रता सिद्ध तो मन से करना है, इसलिए मन की एकाग्रता करना बहुत कठिन होने के कारण मन को क्या कह दिया? दुर्गा मामक मन दुर्गे निवासम कुरु। हे शिवा, तुम्हें दुर्ग में रहने की आदत है, वही तुमको अच्छा लगता है, मेरा ये मन रूपी दुर्ग खाली पड़ा है इस समय, तुम्हारे न रहने के चलते और विषयों काम क्रोध आदियों ने निवास किया है, और यदि आप आकर उस मन रूपी दुर्ग में रहोगे तो आपके आते ही काम क्रोध आदि अपने आप भाग जाएंगे, हाँ? और सारे जीवन में समृद्धि भी आ जाएगी। दूसरी बात, दुर्गा अति प्रिय, तो दुर्गा माने पार्वती। तीसरा अर्थ हो गया दुर्गा अति प्रिय, दुर्गा माने पार्वती, पार्वती आपके अति प्रिय है। सारी दुनिया को छोड़ सकते हो आप, हैं? कपड़े भी छोड़कर नंगे घूम सकते हो, भोजन भी छोड़कर बैठ सकते हो, वस्त्र भी छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो, दुनिया तीनों लोग छोड़ सकते हो, लेकिन दुर्गा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम दुर्गा थी जिंदे दुर्गा को, क्या मरे हुए दुर्गा को तो नहीं छोड़ सकते हो? कितनी प्यार है तुमको दुर्गा से, है? देख लो, सती जब मरी तो मरने पर हम लोग तो क्या किया, है? हमारी पत्नी मरी तो हम लोगों ने क्या किया, बोलो? चंदनवाड़ी ले गए कि नहीं, है? और शिवजी ने क्या किया? हा, क्या प्रिय, कंधे में डालकर आ लेके चल पड़े, कितना प्रियता। आत्मा नहीं है फिर भी उसको छाती से लगा रहे हैं, कंधे में लेकर चल पड़े, संसार को छोड़ दिया, सब भूल गए, विचरण कर रहे हैं भगवान शिव। तो दुर्गा अति प्रिय, इतना प्रिय है कि उन्होंने दुर्गा को यानी सती को, पार्वती को, देवी को आधा अंग ही दे दिया। तुम लोगों ने दिया है, खाली नाम रख दिया अर्धांगिनी, और देने में कुछ नहीं दिया है। नाम क्या रखा है, नाम क्या रखा है, अपनी पत्नी का नाम क्या रखा है आप लोगों ने? अर्धांगिनी। और कि दिया क्या, उंगली तक नहीं दिए उसको, आधा अंग की बात छोड़ दो, उंगली तक नहीं दिया है। अब भगवान शिव ने तो सचमुच आधा अंग ही दे दिया, ले तभी जाकर अर्धनारीश्वर हो गए भगवान शिव। कितना प्रियता है, आहा दुर्गा, भगवान शिव को दुर्गा इतनी प्रिय है, देवी इतनी प्रिय है, फिर भी भगवान शिव की पूजा नहीं करते, आराधना नहीं करते, खाली कृष्ण कृष्ण करते हुए गुजे के पीछे दौड़ते हैं। सर्वस्व अपना आधा अंग दे दिया शिव की भक्ति नहीं करके, जो छुप छुप के लुक लुक के मक्खन खाता है और नाच नचाता है और भाग जाता है, इसके पीछे फिर दौड़ते रहते हैं। भगवान भागे नहीं, भागे शिव तो नहीं भागे ना, कृष्ण भाग गए कि नहीं, है? जंगल में, घोर जंगल में रात्रि के समय में भाग गए, सब अवलाओं को एकले छोड़कर, एक को लेके गए, उसको भी बीच में ले जाकर छोड़ दिया, ले बिचारी अब रोने लगे, है? अब रो रो कर गा रहे, रुरुदु दुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा, वेणु गीत सुनो, गोपी गीत सुनो, जयति ते अधिकम जन्मना, रोते हुए गा रही है, खोज रहे हैं बिचारे, है। पेड़ से पूछते हैं, तुमने देखा हमारे दैत को? हमसे क्यों पूछते हो, हम तो जड़ हैं। बोले नहीं महाराज, तुम जड़ नहीं हो, तुम तो चैतन्य हो, हाँ? और तुम चैतन्य ऐसे हो कि खड़े हो, ऊंचे हो, एकदम ऊंचे हो, और भगवान के छवि को देखते देखते तुम्हारी ऐसी समाधि लग गई है कि तुम्हारे में हलचल ही नहीं है, जड़ जैसे भ्रांति दुनिया को हो रही है, तुम तो उसके छवि को देखकर समाधि में बैठे हो। बताओ किधर है, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे हो ना। देखो किधर गए हैं, इधर गए कि उधर गए हैं। अब तुमसे नहीं पूछे तो हम किससे पूछेंगे है? तो रोने लग गए, विलाप करने लगे। और भगवान शिव ने तो आधा अंग ही दे दिया भाई, इसलिए दुर्गा अति प्रिय, तीन अर्थ हो गए भाई, है ना। दुर्गा अति प्रिय, मन दुर्गा, पहाड़ आदि दुर्गा, दुर्गा अति प्रिय, दुर्गा प्रिय। मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु, आप सुरक्षित रहोगे क्योंकि मेरी सेना इतनी बलवान है कि कोई भी तुम्हारे को आक्रमण नहीं कर पाएंगे। यही बात यहां कह रहे हैं। दूसरी बात, अब भगवान शिव को फिर दूसरे शब्द से संबोधन कर रहे हैं। मा गच्छ त्वम इतस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादि किरात मामक मना कांतार सीमांतरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्य मोहा दया तान हत्वा मृगया विनोद रुचिरता लाभम च संप्राप्स्यति। हे विभो, हे गिरिशा, मा गच्छ त्वम इतस्ततो, हे गिरिशा तुम अब इधर उधर मत भटको, जंगलों में मत भटको भाई। शंकराचार्य जी भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए यहां कह रहे हैं, स्वामिन आदि किरात, भगवान शिव तो किरात वेश धारण करके जंगलों में शिकार खेलते थे, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात का वेश धारण करके जंगल में शिकार खेलते हुए भ्रमण करते थे। अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए घोर जंगल में जाकर तपस्या किया अर्जुन ने, और गांडीव धनुष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तो भगवान शिव ने विचार किया कि ये अस्त्र के लिए तपस्या तो कर रहा है, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल है कि नहीं। इसको जो अस्त्र शस्त्र देंगे उससे इसका अपना उपकार करेगा कि अपकार करेगा, पहले परीक्षा तो ले। तो जिस जंगल में अर्जुन तपस्या कर रहा था भगवान शिव से अस्त्र प्राप्ति के लिए, उसी जंगल में भगवान शिव एक भील किरात का रूप धारण कर लिया और धनुष्बाण लेकर चल पड़े जंगल में। तो देखो तुम लोग अन्यथा नहीं ले लेना हो। तो एक जो सुअर था, सुअर भगवान शिव की लीला तो है ना, गुजराती में भुंड बोलते हो ना, सुअर बराहा, वह भगवान शिव की लीला थी, अर्जुन को हैरान करने लगा। जहां समाधि में बैठा, ध्यान में बैठा, तपस्या में बैठा है, वह सुअर उसे के चारों तरफ घूमे और अर्जुन को जाकर उसके सिंह मारे, कभी लात मारे, कभी पूंछ मारे, कभी सूंड मारे, उसका मुख मारे, अर्जुन को फिर इस प्रकार से विक्षेप करे और अर्जुन उसकी समाधि टूट जाए, तब टूट जाए, फिर उसको दूर भगावे। तो अब दूर चला गया, फिर आकर बैठे साधना करने, तपस्या करने, फिर वो आ जावे। ये भगवान शिव की लीला थी, उनकी प्रेरणा थी। तो हैरान किया तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, ये मेरी साधना को दया करुणा और अहिंसा के बल पर मुझे हैरान कर रहा है, और दया करुणा अहिंसा का दुरुपयोग कोई करना चाहे तो उस समय थोड़ी क्रूरता भी दिखानी चाहिए। अपना अहित होता हो दया के चलते तो वो दया किस काम की भाई, उस करुणा की किस काम की, भाई अपना ही अहित होने जा रहा है। अपना हित करते हुए दूसरों की उपकार करो तो वो दया दया है। आत्मा विनाश करते हुए दूसरे की दया क्या दया है भाई। तो अर्जुन को आ गया गुस्सा, क्षत्रिय तो था। गीता में कहा है ना, तू कहता है अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा। प्रकृति त्वम नियोक्षसि, तेरी जो प्रकृति है ना अर्जुन, तुझे युद्ध करा के ही छोड़ेगी। अनिच्छन्न पिवार्षणे बलादिवन योजति, तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्त जिस चाज को नहीं चाहता है वही काम करा के ही छोड़ेगी बस। तो यही हुआ, अर्जुन तो क्षत्रिय था, आ गया गुस्सा, तुरंत धनुष बाण उठा लिया और उस पशु को, सुअर को उसने तीर चलाई। और उसी समय में भगवान शिव ने भी तीर चला दी, दोनों तीर उस सुअर में जाके लग गए एक ही साथ। ये भगवान शिव की लीला थी। और उसमें तीर लगा था, अपना अपना तीर तो निकलना ही था। भगवान शिव भी अपने तीर लेने के लिए गए, उनका कहा कि ए खबरदार, ये मेरा, मैंने मारा ये पशु, ये मेरा शिकार है। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं मैंने मारा है, मेरा शिकार है। पहले मैंने, भगवान ने कहा पहले मैंने मारा। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया वहां है, ये शिकार किसका है, अर्जुन का है कि शिव जी का है, किसने मारा। वहां तो अपनी अस्मिता का प्रश्न आ गया ना। तो भगवान शिव जी कहते पहले मैंने मारा है इसको, मैंने मारा तब जाके तेरा तीर लगा है। अर्जुन ने कहा कि नहीं पहले मैंने मारा है फिर तुम्हारा तीर लगा है, इसलिए ये मेरा है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि अरे बेटा ये क्यों विवाद करते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसी का है, चल है। दोनों लड़ते हैं आपस में, ये जाने दो एक तरफ, दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा ये उसका है ये शिकार। तो अर्जुन कहा कमजोर था भाई, उठाया धनुष, चल यही सही। तू एक जंगल का मनुष्य, भील कुल किरात, और मुझे चुनौती देता है। उसको क्या पता कि शिव जी है, वो तो किरात का वेश धारण करके ये सब बात कर रहे हैं। अर्जुन के बड़ और अस्मिता है, कहां मैं अर्जुन धनुषधारी, कहां ये जंगल का भील, कहां जंगल का आदिवासी किरात, ये मुझे चैलेंज दे रहा है, चल लड़ाई करते हैं। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया। ऐसा युद्ध हुआ कि बस अंत में उसके युद्ध कौशल्यता को देखा भगवान शिव ने,